الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم انشاء اللہ تعالی نئی سورہ شروع کرنے جا رہے ہیں، سورة النحل. بہت خوبصورت سورت ہے یہ. سورت مکی دور کے آخر کے زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کے توحید کو ثابت کیا ہے کہ وہ رب جس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں سے اس کو پہچانو. اور اسی لیے اس کا نام سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، یعنی نعمتوں والی سورت جس میں نعمتوں کا ذکر ہے. تو یہ نعمتیں دلیل ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، لہٰذا اس کو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یاد دہانی اللہ کی. اعلیٰ کہتے ہیں نا نعمتوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے اس میں یاد دہانی کرائی گئی ہے. تو اس سورت کا نام النحل، نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی، جس کا ذکر آیت نمبر 68 میں آئے گا. اس کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی النحل کا لفظ نہیں آیا قرآن پاک میں. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورت بڑی مشکل وقت میں نازل ہوئی ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایسا دور جس میں انتہا سے زیادہ ظلم و ستم اور تشدد ہو رہا تھا مسلمانوں پر، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ اس سورت کو پڑھیں گے. ساری سورت ویسے تو مکی ہے، لیکن تین آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے، 95 سے 97 تک. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ تین آیتیں مدنی ہیں، باقی ساری سورت مکی ہے. اور جیسے آپ کو مکی سورتوں کا ایک سٹائل اب پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں توحید کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے، آخرت کی، رسالت پہ ایمان، تو اس لحاظ سے اس سورت کے مضامین آپ کو نظر آئیں گے. یاد رکھیے کہ سورتوں کے جو نام ہیں وہ ان کے ٹائٹلز ہیں، ان کے ٹاپکس نہیں ہیں. ٹاپک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی موضوع، یعنی جس کے گرد سورت گھومتی ہے. تو ایسا نہیں کہ شہد کی مکھی کی کوئی باتیں اس سورت کے اندر ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جسٹ ایک ٹائٹل ہے. تو ٹائٹل کوئی بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن موضوع اس کا ڈفرینٹ ہے. موضوع جیسے میں نے آپ کو بتایا توحید ہے اس کا موضوع، ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں آج ہم آیت نمبر 1 سے 21 تک سورۃ النحل، دو رکوعات ہیں. اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ. فیصلہ مطلب امر، مطلب فیصلہ. کون سا فیصلہ؟ عذاب کا بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. دونوں ہی امر ہیں، دونوں اللہ کے امر سے ہیں. امر وہ چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بس کن فرمانا ہے اور اس نے ہو جانا ہے، نہ اس کے لیے کسی سبب کی ضرورت ہے، نہ کسی دیری اس میں لگے گی اس کے پروسیس کو ہونے میں، بلکہ جو ہی کہا جائے گا کن تو وہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا. کون سا فیصلہ؟ یہی عذاب کا یا قیامت کا؟ تو قیامت تو ابھی تک نہیں آئی. اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ٹائم ہے وہ ہمارے ٹائم سے بالکل مختلف ہے. دنیا کے 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن ہوتا ہے، تو یہاں کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں وہاں کے لیے. اور لیکن یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، مطلب ہے یعنی بالکل قریب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جو اپنی یہ دو انگلیوں کو ملا کے، یہ جو انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر ملا کے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں, اتنی قریب ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اب بس قیامت آ جانی ہے, قیامت اب قریب ہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے, تو اسے اس کپڑا کھول کے بیٹھے ہوں گے, ابھی وہ ان کو لپیٹ بھی نہیں سکیں گے, اور ایک شخص اپنا حوض بھر رہا ہوگا اور اس میں سے کچھ پی بھی نہیں سکے گا, اور ایک شخص اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا اور اس میں سے بھی پی بھی نہیں سکے گا, اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی. یعنی اتنی اچانک, کیونکہ ایسا لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہوگا کہ اچھا پہلے یہ ہو رہا ہے, پھر لوگ وارن ہو گئے ہیں کہ اچھا قیامت آ رہی ہے, اچھا پتہ نہیں کل آ جانی ہے, لوگ پریشان ہو رہے ہیں. نہیں, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا, بالکل اچانک سے. تو یہ امر ہے اللہ کا. اب آپ یہاں دیکھیں, عطا جو ہے میں نے آپ کو بتایا یہ ماضی کا صیغہ ہے, تو آ چکا اللہ کا فیصلہ, ابھی تو نہیں آیا. تو ماضی کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ اس لیے یاد رکھیں, جب بھی قیامت کی بات ہوتی ہے, وہاں کے احوال کی بات ہوتی, تو یوزلی آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں بات کی جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ماضی کی جو بات ہوتی ہے نا, وہ کنفرمڈ ہوتی ہے. اب دیکھیں جو کل ہو گیا, اب آج تو نہیں ہم شک کریں گے کہ کل پتہ نہیں ہم کہیں گئے تھے یا نہیں گئے تھے. اب وہ اگر گئے تھے تو وہ ہو چکا, وہ کنفرمڈ ہے کہ آپ گئے تھے, ٹھیک ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز اتنی کنفرم ہے کہ اس میں ایسے ہی ہے ہمارے لیے جیسے ماضی میں کوئی چیز گزر چکی ہوتی, اتنا اس کو کنفرم سمجھو, ٹھیک ہے. تو ہم مانا تو مضارے میں کرتے ہیں کہ آ گیا, لیکن سیگا ماضی کا یوز ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کیونکہ کوئی چیز ماضی حال مستقبل کچھ نہیں, اس کے لیے سب ایکول ہے. اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے جو پیچھے ہو گیا وہ تو کنفرم ہے, آگے کا پتہ نہیں. یہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے, پتہ نہیں. اب ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں ہم جا بھی سکیں گے کہ نہیں, کیونکہ ہم انسان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مستقبل ایسا نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے, اس کو شک ہو یا پتہ نہیں ایسا ہو یا نہیں. نہیں, اس کو ہر چیز کا ایسے ہی علم ہے جیسے کہ پچھلی گزری ہوئی چیز کا علم ہوتا ہے. فلا تستعجلوا, تو تم جلدی نہ مانگو اس کو. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو وہاں پہ something was going on جس کے اوپر ایک دم سے ایسی بات کی گئی کہ سورت شروع ہوتی ہے اور ایسے لگتا کہ جیسے کچھ ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر کہا گیا کہ تم جلدی نہ کرو. something was going on, right? اب جسے سمجھ آتا ہے نا, نہ یہ ایک دم سے اس طرح سے کہہ دینا, اس طرح یوزلی سورت شروع نہیں ہوتی. تو اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ اتنی زیادہ اس چیز کو مانگ رہے تھے کہ اب بتائیں نا کب آئے گا پھر عذاب. آپ تو روز ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم مانو گے نہیں تو عذاب آ جائے گا, مانو گے نہیں تو عذاب آ جائے گا, تو اب کیوں نہیں آتا. ابن عباس کہتے ہیں جب آیت نازل ہوئی نا سورہ قمر کی, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, تو کفار مکہ نے انتظار شروع کر دیا, آج آتا ہے کل آتا ہے. جب گزر گئے دن کافی تو کہنے لگے آیا تو ہے نہیں. پھر سورہ انبیاء کی پہلی آیت اتری, ایک طرح بل الناس حساب ہو, تو وہ کیا ان لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا, تو تب بھی انہوں نے کہا کہ اچھا اب آنے والی قیامت, تو انتظار کرنے لگی. جب نہیں آئی تو انہوں نے کہا دیکھے. اور اس چیز کو وہ بیس بناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کا, کہ اگر یہ سچے ہوتے تو آنا جاتی. اگر یہ سچے ہوتے, یہ اتنی ہمیں کہتے ہیں, ایک طرح سے ہمیں ڈراوے دیتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی اور عذاب آ جائے گا اور تم بچ جاؤ اور تم اپنا آپ کو صحیح کر لو اور یہ مت کرو جو تم کر رہے ہو, تو ہم تو نہیں ان کی بات مان رہے. کیوں نہیں آتی پھر قیامت, کیوں نہیں آتا پھر عذاب؟ تو عذاب اور قیامت دونوں کے معنوں میں یہ امر ہو سکتا ہے. اور آپ کو سمجھ آ گئی نا ماضی کا صیغہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, یہ یقینی ہے, ایسے ہی ہے جیسے ماضی میں کوئی واقعہ ہو چکا ہو. اور یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ واقعی قیامت قریب ہے, اور جب اللہ تعالی کا حکم ہو جائے گا نا, تو وہ پھر ذرا بھی دیر نہیں لگنی. لہذا اس کو قریب سمجھیں. اللہ کا حکم سر پہ کھڑا ہوا ہے, بس اللہ تعالی کے کن کہنے کی دیر ہے. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں پکڑے ہوئے ہیں, منہ میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے, और उनकी नजरें अल्लाह ताला के अर्श की तरफ लगी हुई हैं, उनके कान लगे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कब उनको हुक्म हो कुन, तो वो सूर फूंकते, ये सो रेडी। हालांकि उनका तो हिसाब किताब नहीं है, किसका हिसाब किताब है, किसको कयामत के दिन खड़े होना है अल्लाह ताला के सामने, उनको फिक्र ही नहीं जिन्होंने खड़े होना। और वो इतने ज्यादा अलर्ट हैं, अलर्ट तो हमें होना चाहिए। तो फरमाया फला तस्ताजिलू, तुम जल्दी मत मांगो उसको, क्यों ना जल्दी मांगो, क्यों नहीं हमें जल्दी मचानी चाहिए, हम भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा कयामत करीब है, अच्छा उसकी निशानियां पूरी हो गई, अच्छा खबर आ रही है, अच्छा बड़ा इसकी हमें एक्साइटमेंट हो जाती है। नहीं, जल्दी मचाने का इसलिए फायदा नहीं है कि जितनी जिंदगी हमें मिली हुई है ना, ये मोहलत है काम करने की, ये मोहलत है अमल करने की, तौबा करने की। जिस दिन ये जिंदगी खत्म हो गई ना, सब मोहलत खत्म हो जाएगी। तुम्हें तो अल्लाह ताला ने चांस दिया, तुम अपने लिए अजाब मांगते हो, तुम अपने लिए कयामत मांगते हो कि जल्दी आ जाए। इसीलिए मौत मांगने से भी मना किया गया ना, हर इंसान की मौत भी उसकी कयामत ही है, कि दुनिया की मुश्किलात से तंग आके, बीमारियों से या मसलों मसाइल से कभी नहीं ऐसा कहेंगे अल्लाह मुझे मौत आ जाए बस, इसलिए कि जितना वक्त मिल रहा है ये हमारे लिए बेहतर है। हाँ बहुत ही कुछ तंग आ जाए तो बस ये कह सकता है अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो, लेकिन मौत ना मांगे इसलिए कि बस खत्म हो गई तो फिर कभी वापस थोड़ी आएंगे अमल करने, कभी तौबा का चांस थोड़ी मिलेगा। सुबहाना हुआ था आला अम्मा युश्रिकून, सुबहान वो पाक है इससे, क्योंकि वो बातें करते थे ना। यहाँ पे क्यों आ गए, ये बात क्यों आ गई, क्योंकि वो कहते थे कि देखो आप नाउज़ बिल्ला, आप तो झूठे हैं, आप तो हमें गलत बयान नहीं कर रहे हैं, आप तो कहते हैं कि भाई अजाब आ जाएगा, क्यों नहीं आ रहा। यानी नबी को झुठलाना ऐसे ही है कि अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार करना, कि अल्लाह नाउज़ बिल्ला कि वो इतना कमजोर है कि हम पर अजाब नहीं ला सकता। तो उस कॉन्सेप्ट की को करेक्ट किया जा रहा है कि अल्लाह ताला की कुदरत को तुम ऐसे समझते हो कि वो अजाब नहीं ला सकता, वो तो पाक है हर कमजोरी से, तुम उसको कमजोर समझते हो। तो वो सुबहान का मतलब क्या होता है, या तस्बीह का मतलब क्या होता है, अल्लाह की पाकी बयान करना, हर किस्म के ऐब, हर किस्म का नक्स, हर किस्म की कमजोरी, हर किस्म की वो चीज जो अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं है, हम कहते हैं अल्लाह उससे पाक है। ठीक है, जो भी किस्म की कोई भी कोई तसव्वुर में भी कोई कमजोरी आ सकती है ना, मसलन बीमारी है, बुढ़ापा है, भूख है, प्यास है, कमजोरियां है ना ये, औलाद की चाहत है, औलाद की या किसी की मोहताजी है, ये सब कमजोरियां वीकनेसेस हैं, इंसानों में तो हो सकती है, अल्लाह ताला इनसे पाक है। जिस तरह कभी ऐब, जिस तरह कभी फ्लॉ, नक्स आपके जहन में भी कहीं आ सकता है ना, तस्वुर में भी कहीं आ सकता है, अल्लाह ताला की जात उससे पाक है। तो जब हम तस्बीह करते हैं ना, सुबहान अल्लाह कहते हैं, तो असल में हम ये डिक्लेयर कर रहे होते हैं, छोटी बात नहीं है। ठीक है, ये कोई चीज इनमें से अल्लाह में नहीं है, लेकिन ये सलबी पहलू है इसका। सलबी कैसे लिखते हैं, इसको लिख लें आप, सीन लाम बा या, ये बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने लगी। ये जैसे, अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आप किसी की मसलन कह रहे हैं फलां जो है ना वो झूठी नहीं है, वो बेईमान नहीं है, वो बदअखलाक नहीं है, वो गंदी नहीं है, वो कैरेक्टरलेस नहीं है, यानी आप नहीं नहीं कर करके ना, तो उसके अंदर से सारी बुराइयों को उसमें से उसको पाक करार दे रहे हैं। तो ये भी एक उसकी अच्छाई बयान करना है, लेकिन हो सकता है कि अगर वो झूठी नहीं है तो हो सकता है वो सच्ची भी ना हो, कुछ भी ना हो। तो ये अभी मुकम्मल तारीफ नहीं हुई उसकी, उसकी मुकम्मल तारीफ तब होगी तो आप कहेंगे वो झूठी नहीं है, वो सच्ची है, वो बेईमान नहीं है, वो ईमानदार है। वो गंदी नहीं है, वो साफ सुथरी है, ठीक है। तो ये है जो आप नहीं नहीं करके कहते हैं ना, ये सलबी पहलू है। बाज लोग इसी को तारीफ समझते हैं, ये मुकम्मल नहीं है जब तक इसके साथ इजाबी पहलू ना आए। इजाबी पहलू क्या है? कि वो रब पाक है, वो रब करीम है, वो रब रहीम है। जब हम कहते हैं वो रब जुल्म नहीं करता, तो ये इसकी सलबी तारीफ है। लेकिन जब हम कहते हैं वो रहमान और रहीम है, तो इजाबी पहलू है इसके अंदर। ये बात समझ आ गई होगी, उम्मीद है। तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि वो अयूब से पाक है, हम ये भी कहते हैं कि इसके अंदर ये कमाल की सिफात है। जो भी कमाल की सिफात, जो भी खूबियां कोई तसव्वुर में भी आ सकती हैं, उनकी इंतहा मेरे रब के अंदर है। ये होती है तस्बीह, इसको कामिल तस्बीह कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दी, इसीलिए ये कलमा इतना प्यारा। तो अल्लाह ताला हर नक्शे भी पाक है और उसमें तमाम खूबियां भी कमाल दर्जे पे मौजूद है, और वो उन तमाम शिर्क से बुलंद है, अबव है उससे, जो तुम घटिया छोटी छोटी शिर्क की बातें करते हो, इन सब से वो बुलंद है, बहुत ऊपर है, वे बियॉन्ड दिस जो शिर्क तुम करते हो उसके साथ। युनज़्ज़िलुल मलाइकता, वो उतारता है फरिश्तों को, किसके साथ? बिर्रूही, रूह के साथ। अब ये रूह का वर्ड जो है कई चीजों के लिए आता है। रूह का वर्ड मसलन है रूहुल कुदस के लिए भी आता है, जिनको रूहुल अमीन जिब्राइल अलैह सलाम के लिए भी आता है। इसी तरह रूह का वर्ड इंसान की जो रूह है उसके लिए भी आता है, ठीक है, हमारे अंदर भी तो एक रूह है ना। और इसी तरह रूह का वर्ड वही इलाही के लिए भी आता है, ठीक है। कुरान पाक में और जगहों पे भी रूह के वर्ड को लाया गया वही के लिए। इसलिए कि देखें, जैसे इंसान की जो जिंदगी है ना, वो पॉसिबल नहीं है बगैर रूह के। हमारे अंदर से रूह निकल जाए, हम क्या है? डेड है, सही है ना। रूह के साथ ही जिंदगी है ना। इसी तरह दिल की जिंदगी, दीन की जिंदगी, ईमान की जिंदगी भी वही इलाही के साथ है। अगर वही ये कुरान जिंदगी में नहीं है, वही इलाही जिंदगी में नहीं है, तो दिल भी मुर्दा है। हमें इस रूह की तो फिक्र है जो हमारे जिस्म के अंदर है, कि रूह ना निकल जाए कहीं, हम मर ना जाए कहीं। इस खतरे को कितना बड़ा खतरा अपने लिए समझते हैं कि जितना दिन भी हो सके मेरी रूह मेरे अंदर बाकी रहे, रूह निकल गई तो मैं मुर्दा हूंगी, लेकिन दिल की रूह का इंतजाम नहीं सोचते, उसका नहीं पता, उसकी फिक्र नहीं है कि उससे मेरा दिल मुर्दा हो जाएगा। हम मुर्दा हैं अगर हमारी जिंदगी के अंदर ये रूह नहीं है, कुरान नहीं है, तो यकीन करें हम चलती फिरती लाशें हैं, सिर्फ मुर्दे हैं और कुछ नहीं है। सांस लेते हैं मगर मुर्दा है, हमारा दिल ही जिंदा नहीं है। कभी इसको भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो नहीं चाहते आप दिल को जिंदा करना? नहीं चाहते आप दीन ईमान जिंदा हो मेरा? तो फिर इस कुरान से जुड़ना पड़ेगा। ये फरिश्ते रूह को लेकर उतरते हैं, मिन अमरी ही, उसके हुक्म से, किसके? अल्लाह ताला के। पहले आ गया ना अमरुल्लाह, तो मैं अमरी उस रब के हुक्म से, किस पर? आला नहीं है शाओ मैंने बात, ये मैं और आप नहीं डिसाइड करेंगे कि किस पे उतरते हैं फरिश्ते वही लेकर, ये अल्लाह डिसाइड करेगा। क्योंकि कुफारे मक्का कहते थे अगर रिसालत मिलनी थी तो किसी बड़े सरदार को तो मिलती, एक यतीम को मिल गई तो इसको क्यों मिली? तो हम इतने बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे ताइफ में, इतने बड़े बड़े सरदार थे, अगर सूट करती थी तो उनको करती थी। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ भरा होता है ना कि इस दुनिया की दौलत और ओहदे जिसको मिल जाए वो ही बड़ा है, तो उनके नजदीक वो ही बड़े थे। अल्लाह ताला के नजदीक थोड़ी हमारी दौलतें देखी जाती हैं, हमारे असबाब, हमारे माल, हमारे ओहदे देखे जाते हैं। तो वो जिसके ऊपर चाहे وہی کو نازل کریں اپنے بندوں میں سے. آپ چوز نہیں کر سکتے, یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہوتی ہے, خود چنتا ہے وہ. تو اب یہ وہی کی سمجھ آ گئی کہ کیسے یہ روح ہے, جیسے انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے, اسی طرح یہ دل کی زندگی, اس لیے اس کو روح کہا گیا. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت کے لیے چن لے. اور اب یہ جو نبوت کا کام ہے, ان کا نبی کا مقصد ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے وہ کرے گا کیا کام, کیا کام کرے گا, اس کا پرپس کیا ہے اس کو بھیجنے کا, آپ بتائیں نبی کیوں آئے. شاید آپ میں سے کوئی کہہ رہا ہو وہ اس لیے آئے تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں, وہ اس لیے آئے تاکہ یہ جو بے حیائی ہے یہ ختم ہو, لوگ بے ایمانی نہ کریں, لوگ ایسے نہ کریں, لوگ بڑے جہالت کے اندر تھے تو جہالت سے نکالنے کے لیے اس کے لیے اس کے لیے, پتہ نہیں ایسے ہماری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں. لیکن پیغمبر ایک کام کے لیے آئے جو بتایا گیا یہاں پہ, ان انذرو کہ وہ خبردار کرتے, انہو کہ بے شک وہ, کون وہ, اللہ تعالی, لا الہ الا انا, نہیں کوئی الہ مگر میں, فتقونی, بس ڈرو مجھ سے. یہ تھا ان کا میسج ان سے لے کے فتقون تک, اور تمام نبیوں کا یہی میسج تھا. یہ اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں, یہ اس کا ریزلٹ ہے کہ انسان پھر تمام برائیوں سے ہی بچ جاتا ہے, شراب, جوئے, زنا, بے ایمانیاں, بے حیائیاں, سب چیزوں سے بچ جاتا ہے, لیکن وہ پرائمری آبجیکٹو نہیں ہے. دیکھیں یہی تو فرق ہے ایک سوشل ریفارمر میں اور ایک نبی میں. سوشل ریفارمر بھی تو یہی کرتے ہیں نا کہ بھائی لوگوں, بھائی دیکھو بے ایمانی نہ کرو, ملاوٹ نہ کرو, رشوت نہ لو, لوگوں لو کسی پر ظلم نہ کرو, فلاں نہ کرو, تو سوشل ریفارم میں یہی کرتے ہیں نا. لیکن نبی کی چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کا میسج ڈفرینٹ ہے. ہاں اس کے ایفیکٹ ہوں گے, اس کے نتائج, جس کے ریزلٹ نکلیں گے کہ سوسائٹی میں خود بخود پھر جب ایک توحید کا کلمہ سب پڑھنے لگیں گے اور ایک اللہ سے ڈرتے ہوں گے تو ساری چیزیں ان کی فکس ہو جانی ہیں. مگر یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو دودھ میں پانی نہ ملاؤ اس کے لیے, اس کو بتانے کے لیے آئے, وہ بڑی رشوت نہ لو, بھائی وہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو, اس کو بتانے کے لیے آئے, وہ بھائی بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو, یہ بتانے کے لیے آئے. نہیں, وہ ایک بڑا میسج لے کر آئے, اور اس امبریلا کے نیچے سارے ہی کام آ جاتے ہیں پھر, کہ ان سے باز کرنا اور لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جانا, وہ سارے اس کے انڈر ہیں. تو اب توحید کی طرف آئیں گے ہی تو آخرت میں عذاب سے بچیں گے, جنت میں داخل ہوں گے, وہ سب اس کے انڈر ہیں. مگر ان کا پرائمری میسج کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ رسول کیوں بھیجے گئے تو آپ نے یہ نہیں لکھنا تاکہ ان کی زندگیاں سوار دیں, ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے, ان کے جو کام بھی صحیح ہو جائیں, اور لوگ ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں, اور لوگ بڑے اچھے انسان بن جائیں. اس لیے نہیں, انذرو کے وہ انذار کرنے کے لیے آئے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے, بس اس سے ڈر جاؤ. اور یہ ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں, ہر پیغمبر کا وہاں پہ بتایا گیا, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, اتنے پیغمبروں کا بتایا گیا, سب نے ایک ہی پیغام دیا کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. اور یہ خبردار کیا, انذار کا مطلب کیا ہوتا ہے, وارن کر دینا. اب ہم اس کا ترجمہ ڈرانے کے لیے آئے یہ تو کر دیتے ہیں, لیکن اصل اس کا معنی کیا ہوتا ہے, وارن کر دینا کہ اگر تم نے یہ نہیں سمجھی بات تو اس کا نتیجہ بڑا ہی غلط نکلے گا, تم تباہ ہو جائے گے. اب اس کو آپ ڈراوا کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, آپ کو کوئی کہے جناب آگے گڑا ہے, اگر آپ اس راستے پہ گئے اس میں گر جائیں گی, آپ اپنی گاڑی یہاں پہ لے کے جا رہی ہیں, آگے تو بہت بڑی کھائی ہے, آپ کی گاڑی وہاں پہ گر جائے گی, تو آپ کہیں گے ہائے مجھے ڈرا رہا ہے. ڈرا نہیں رہا, وہ تو آپ کو وارن کر رہا ہے, وہ تو آپ کا بھلا کر رہا ہے, وہ تو آپ کو بچانا چاہتا ہے. تو اس کو ڈراوا کہہ تو دیتی لیکن ایکچولی وہ وارننگ ہے. تو نبیوں کا فرسٹ کام کیا ہوتا ہے, انذار کرنا. ہاں تبشیر بھی کرتے ہیں وہ, ایسے نہیں کہ صرف وارننگ ہی دیتے رہتے, تبشیر بھی کرتے ہیں, بشارتیں بھی دیتے ہیں, مگر فرسٹ تھنگ جو ہوتی ہے نا وہ انذار ہوتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے کیا فرمایا تھا, पहली दफा क्या फरमाया था कि मैं एक लश्कर, अगर तुम्हें कहता हूं कि पीछे एक लश्कर है जो हमलावर होने वाला है, तो मेरी बात मानोगे? लोगों अपने आप को आग से बचाओ, लोगों अगर ये शिर्क छोड़ दो, लोगों एक इलाह है, तो तबाही हलाकत से बचाने के लिए उनको वॉर्न किया और उनको ये बताया कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के, तो उसी इसका तकवा इख्तियार करो। अब देखिए ना, बाज लोग कहते हैं आए डराते क्यों है, डराते क्यों? भाई हमारे काम ऐसे हैं, हम खुद सोचे हमारे काम किस तरह के हैं। गफलतों में हम पड़े हुए हैं, सोए हम हुए हैं, भूले हुए हम अपनी आखरत को, अपने जाने को, दुनिया में गुम हुए पड़े हैं, कोई परवाह नहीं अल्लाह के हुक्मों की। तो अब आपको बशारतें देना शुरू कर दीजिए, ये कहना शुरू कर दीजिए जी बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, यही कहा जाएगा ना, इससे बाज आ जाओ, गफलत से निकल आओ, छोड़ दो ये सारी चीजें, वरना आगे अंजाम सही नहीं है। फिर कहते हैं मैं डराते क्यों, आप बताइए इसके ऊपर क्या होना चाहिए? पैगंबरों ने भी तो इंतजार किया था, तबशीर तब कीजिए जब लोग इस चीज को समझ जाएं, जब लोग इस चीज को मान जाए, तो उनके लिए तबशीर है, तबशीर है। तो आप फरमाया फत्तकूनी, मुझसे डरो। इंसान डरता किससे है? जिसको बड़ा समझता है, पावरफुल समझता है, जिसके हाथ में कुदरत समझता है, जिसके हाथ में अपना नफा नुकसान समझता है। देखते नहीं आप ये उनसे, ये जो लोग मुशरिक होते हैं, ये कभी सांपों को पूजा कर रहे हैं, कभी आग की पूजा कर रहे हैं, कभी पता नहीं जिस चीज को, या सूरज चांद की पूजा शुरू कर देते हैं। तो सांप वगैरह से तो डरते हैं इसलिए, मुझे हमें को नुकसान ना दे दे, आग से भी डरना, सूरज चांद को बड़ा समझना। तो कहीं ना कहीं इंसान ना किसी को कुछ समझ रहा होता है, किसी के हाथ में कुछ समझता है, कुछ पावर उसको लगती है किसी के पास, तो उसके आगे झुकना शुरू कर देता है। लेकिन जो हर चीज अल्लाह के हाथ में समझता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो डरता है, फिर जो मखलूक के हाथ में समझता है, वो फिर मखलूक से डरता रहता है। समझाई बात? तो हम किसके हाथ में समझते हैं? कहने को तो हम कहते नहीं, हम अल्लाह ताला से डरते हैं, हम उसी को बड़ा समझते हैं, हम अल्लाह हू अकबर कहते हैं, हम ऐसे करते हैं, लेकिन हम जिंदगी में किसी और के हाथ में पावर समझते हैं, उसीलिए उसके आगे झुकते हैं। हमें लगता है ये हमें नफा दे देगा, ये हमें नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए हम उससे डर डर के चलते हैं, और अल्लाह से उतना ही डरते जितना उन लोगों से डरते हैं। कि हमारे नजदीक अल्लाह माफ करे, उनके हाथ में शायद ज्यादा पावर है। अकीदे का बहुत बड़ा लेसन है इसमें, और अकीदे को दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है हम सबको। हम कलमा तो पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे अकीदे दुरुस्त नहीं है अभी तक, और ये अकीदे को मजबूत करना भी जरूरत होती है, ये भी कमजोर हो जाता है। तो अपने आप को ये बातें बार बार दोहरानी चाहिए। खलक समावात वल अर्द बिल हक, उसने आसमानों को और जमीन को पैदा किया, उसने पैदा किया है, और जो कुछ भी तुम्हें नजर आ रहा है वो उसने पैदा किया है, और कैसे पैदा किया? बिल हक, बा मकसद पैदा किया है, बेफायदा ऐसे ही नहीं। उन्होंने कहा था कि ये जो कायनात है, कुछ ने कहा ये राम ने खेल तमाशे के लिए बनाई, खेलने के लिए बनाई, अल्लाह ताला ने ये खेलने के लिए नहीं बनाई, तुम्हारे कॉन्सेप्ट कुछ और होंगे, अल्लाह ताला ने तो बड़ी बामकसद बनाई। और मैंने आपको एक और बात बताई थी पहले, हक का एक और मतलब आपको बताया था। हक क्या होता है? हक वो होता है जिसको अपना सबूत देने के लिए किसी खारजी दलील की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपना सबूत होता है, वो खुद मुंह से, यानी वो अपने आप की सच्चाई खुद बयान कर रहा होता है, आपको कोई एविडेंस लाने की जरूरत नहीं होती उसके लिए कि आप इसको प्रूव करें, कोई कहे जी प्रूव करो इसको, तो खुद दलील है। अच्छा अब कैसे ये हक है? आसमान और जमीन की तखलीक में कैसे सबूत है बताएं? सोचा करें, खुद भी अपना ब्रेन यूज करें, देखें दुनिया में जितने लोगों ने खुदाई का दावा किया, या जितने झूठे इन खुदाओं के पैरोकार है ना, आप एक बात सब में कॉमन देखेंगे, जिसकी भी कोई पूजा करता है, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम की करता है, चाहे किसी दरख्त की करता है, चाहे किसी राम और सीता की करता है, किसी की भी करता है। कभी आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने ये आसमान और जमीन पैदा की है, या किसी पैरोकार ने नहीं कहा जी हमारे ये फलां है उसने ये आसमान और जमीन पैदा की। कोई कह ही नहीं सका कि सूरज मेरी मर्जी से निकलता है, मेरी मर्जी से गुरूब होता है। देख ले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब मुनाजरा किया था नमरूद के साथ, तो उन्होंने क्या फरमाया था, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है, तुम इसको उलट करके दिखा दो। प्रभु ही था, तो मबहूत रह गया, ही वो स्पीचलेस, कुछ नहीं कह सका कि नहीं नहीं मैं करता हूं। ये वो दलाइल हैं जिनके आगे सब कुछ चुप लग जाती है। कैसे कह सकते हैं वो आसमान और जमीन हमने पैदा किया, उनके पैरोकार भी कैसे कहें। तो ये जो निजाम है ना आसमान और जमीन के, जितना बड़ा सिस्टम है, ये खुद बोल बोल के बता रहा है हमारा खालिक वो एक रब है, हमारा खालिक कोई और नहीं है। सुनो इनकी आवाज, ये बता रहे हैं। तो जो फिर खाले के बंदगी तो उसी की जाएगी, इबादत तो उसी की होगी। ताला अम्मा युशरिकून, बुलंद है उससे जो वो शिर्क करते हैं, वो मखलूक को खाले के बराबर कर देते हैं। नहीं, वो तो इससे बहुत बुलंद है, ये मखलूक है सारी की सारी। तो देख लें अल्लाह ताला ने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर तौहीद को बयान कर दिया, और बिल्कुल सिंपल अल्फाज के अंदर ये साबित कर दिया कि देखो आसमान और जमीन की तखलीक भी, इसका हक से पैदा होना भी तुम्हें साबित कर रहा है कि एक अल्लाह है। और हक का मतलब ये भी होता है कि जैसे किसी चीज को होना चाहिए वैसे ही है, यानी जो उसका पर्पस है उसको वो सॉल्व करने के लिए, उसको जैसा बना होना चाहिए वो वैसे ही है, उस चीज के लिए परफेक्ट है। जैसे ये जमीन अल्लाह ताला ने बनाई इंसानों के रहने के लिए, तो इसके अंदर आप देखिए हर वो चीज मौजूद है जो इंसानों की जिंदगी के लिए, उनकी सस्टेनेंस के लिए, उनके उनके आगे चलने के लिए, उनके परवरिश पाने के लिए जो भी चीजें चाहिए थी वो यहाँ पे मौजूद है। जैसी इसको होना चाहिए था वैसी ही है। अगर ये मार्स जैसी होती, अगर ये मरकरी जैसी होती, अगर ये किसी और सितारे सैयारे की तरह होती, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल ही नहीं थी लाइफ। तो जो इसकी शक्ल, जो इसका रंग, जो इसका साइज, जैसा इसके टेक्सचर, जैसा इसका होना चाहिए था, जो हवा का यहाँ पे रेशो होना, जो ग्रेविटी का रेशो होना, जो जो भी चीजें यहाँ की थी ना, वो परफेक्ट है इंसानों के सर्वाइवल के लिए, यहाँ उनकी सस्टेनेंस के लिए। वो अब रह ही नहीं, कायम ही नहीं इंसान की जिंदगी रह सकती थी अगर अल्लाह ताला ऐसे परफेक्ट ना बनाता तो। बिल हक, हक के साथ बनाया। ऐसे लगता है कोई बहुत एक्सपर्ट है जिसको पता है कि इसकी ये जरूरतें होंगी, इसको अपने यहाँ पे रहने के लिए ये चाहिए, इसके मुताबिक ये रेशो होना चाहिए हर चीज का, हर चीज का ये वेट हो, हर चीज की ये इसके अंदर सिफात हो, तब ये मखलूक यहाँ रह सकेगी। ऐसे नहीं लगता किसी एक्सपर्ट ने बनाया है। वो एक्सपर्ट और कौन हो सकता है, जिस जिसके पास इल्म होगा वही हो सकता है, जो बाखबर होगा, जो फ्यूचर को भी जानता होगा, जिसको पता है कैसे क्या होना चाहिए, जिसकी नजर हर चीज पे होगी, वो रब अल्लाह है और इसके सिवा कोई नहीं। किसके पास इतना नॉलेज है इनको, तो जिसको भी उन्होंने बनाए हुए अपने खुदा, चाहे वो दुनिया से जा चुके हैं, चाहे वो दुनिया में मौजूद है, उनको तो ये भी नहीं पता था हमने मरना कब है, उनको तो ये भी नहीं पता हम ये खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, उनको तो ये भी नहीं पता उनके जिस्म में कोई बीमारियां पैदा हो रही हैं, वो भी डॉक्टर के जाते हैं, कैसे खुदा है वो। और अगर दुनिया से जा चुके तो जब दुनिया में थे कभी बीमार तो हुए थे ना, कभी उनके साथ मसले मसाइल तो हुए थे ना, तुम कैसे उनको पूछते हो। फिर देखो जमीनों आसमान की तखलीक के बाद फरमाया खलक इंसान मिन नुतफतिन, इंसान को एक हकीर पानी के कतरे से पैदा किया, नुतफा, नुतफा वो पानी जो टपक के निकलता है, टपकने वाला हकीर कतरा, उससे पैदा होने वाला इंसान सोचता नहीं है कि वो कैसे देखने वाला बन गया, सुनने वाला बन गया, चलने फिरने वाला बन गया, भागने वाला बन गया, सोचने वाला बन गया। तो सोचते नहीं कैसे बन गया जरा इंसान। आप सरसरम ने दिखाया था ना, इसी तरह से आप भी अपनी हथेली के ऊपर जरा सा थूक फेंक के देखें और ये देखें कि ये इंसान था, इससे इंसान पैदा हुआ। इतने उस कतरे से तो घिन आती है कि जो माँ बाप थे ना, उनके भी कपड़ों पे लग जाता तो थू डालते, बहा देते उसको, घिन खाते उससे। लेकिन जब अल्लाह ताला उसी कतरे को इतना प्यारा बना देता है तो वो भी चूम चूम के रखते। किसने बनाया फिर ऐसा? तुम तो पानी की एक हकीर बूंद थे, मैं और आप क्या थे? हम अपनी असलियत को सोचें जरा कभी, मैं और आप भी वो ड्रॉप थे और इससे ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं थी। हम वो ही रह जाते तो हमारे माँ बाप भी हमें सीने से ना लगा के रखते, वो भी कराहत खाते हमसे। कितना करम है मेरे रब तेरा कि तूने हमें ऐसा बना दिया कि जो देखे गोद में उठा ले, जो देखे झुलाने लगे, जो देखे प्यार करे, जो देखे रहम खाए। अल्लाह हू अकबर, किसका एहसान है ये? किसने ऐसा बना दिया? वॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन! कहां वो और कहां वो? हम बहुत इंप्रेस होते हैं ना देख के, कोई बिल्डिंग देख लेंगे, कोई ब्रिज देख लेंगे, कोई ठीक है, उन्होंने भी, इंसानों ने भी अल्लाह ताला की दीवी अकल से ही बनाया। लेकिन हम इंसानों को ही एडमायर कर रहे होते हैं उसमें भी, उसमें भी अल्लाह ताला को नहीं एडमायर करते, उसकी तारीफ नहीं करते। ये कभी सोचें, ये तो फिर छोटी चीज है, कभी ये सोचें कि ये अपनी, अपने आप को इंसान देखे, अपनी तखलीक पे गौर करें, कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या था और क्या करके रख दिया। ये हकीर तरीन से लेकर अशरफुल मखलूकात बना के रख दिया। अल्लाह हू अकबर। लेकिन इंसान का फिर क्या हाल हुआ? देखें वो पैदा हुआ, उसे ना चलना आता, ना फिरना आता, ना बोलना आता, ना अपनी हाजत बयान करनी आती, मोहताज ही मोहताज। अल्लाह हू अकबर, इतना मोहताज कि अगर आप उसको छोड़ देना, छोड़ दें अगर आप उसको, तो मर ही जाएगा थोड़े दिन में, क्योंकि ना वो खुद उठ के कुछ खा सकता है। इवन जानवरों के बच्चे उतने मोहताज नहीं होते जितने इंसान मोहताज होते। इतनी अल्लाह ताला ने उसको फ्रेजाइल उतना पैदा किया होता है, जरा सर्दी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता, भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता, कुछ नहीं, खुद अपना उठ के कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी गंदगी भी नहीं खुद साफ कर सकता, इतना ज्यादा वो मोहताज होता है। तो अल्लाह ताला ने उसको क्या किया फिर? उसको उसके हाथों पैरों में ताकत दे दी, उसकी आंखें देखने लगी, उसके कान सुनने लगे, वो उठ के चलने फिरने लगा, फिर वो बढ़ने लगा, पलने फूलने लगा, उसको खिलाया पिलाया, उसको नशो नुमा की उसकी उसकी परवरिश करने के लिए उसके साथ दो बंदे लगा दिए अल्लाह ताला ने अपने, जिनका दिन और रात बस यही काम है कि इसको ही पालें, इसकी परवरिश करें, इसको बड़ा करें, बस वो 24 आवर उसकी जॉब में लगे हुए हैं, उसकी खैर ख्वाही कर रहे हैं, उसकी उनकी जिंदगी वो बन गया है। ठीक है, दो अल्लाह ताला ने अपने बंदे उसके साथ लगा दिए, बस वो पाल पूल के उसको जब बड़ा कर दिया, अब बड़ा सोचने समझने वाला, अब बड़ा बोलने वाला, अब बड़ा चलने फिरने वाला, अब एक्टिव, अब जवान, अब कुव्वत वाला हो गया। तो फिर पता है उसने क्या किया? फ़ाइदा हुआ खसीम मुबीन। शर्म कर इंसान के, फिर तू झगड़ालू बन गया खुल्लम खुल्ला। फिर कहता है अल्लाह ताला ने ये क्या किया, अफ्रीका में इतने लोग मर रहे हैं, मुझे बारिश नहीं हो रही वहां पे, ये क्या बात हुई? हो फलां को अंधा बना दिया। बोला ये क्या बात हुई, क्यों उसने उनको अंधा बनाया? वो देखो फलां जगह पे इतना जुल्म हो रहा है, वो देख नहीं रहा कि इतना जुल्म हो रहा है? अरे शर्म कर, तू किस मुंह से ये बातें अपने रब के लिए कर रहा? क्या चीज था तू, अब झगड़े करने लगा? बड़ा हो गया तो तुझे दलीलें आने शुरू हो गई। खसीम वो होता है जो दलीलें दे दे के झगड़ता है। اپنے خالق اور مالک کے لیے دلیلیں دینے لگا اس کے خلاف؟ اور کوئی خدا نہیں اور کوئی قیامت نہیں اور میں نہیں مانتا اللہ کا حکم، اور مجھے تو یہ لوجیکل ہی نہیں لگتا، یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ مولویوں کی باتیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر کیا لعنت، نہ ہی زمانہ ایسا نہیں گزرا تو کچھ بھی نہیں تھے، یو ار نتھنگ نتھنگ، ایک ایک ذرہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، تم تو ذرہ بھی نہیں تھے، تم تو کچھ تھے ہی نہیں۔ جس رب نے تمہیں یہ بولنے والا، یہ سننے والا، یہ سوچنے والا بنا دیا، تم اسی کے خلاف دلیلیں دیتے ہو، تمہیں نہیں شرم آتی؟ تم کہتے ہیں ہم سے نہیں ماننے جاتے اس کے حکم، تو کہتے ہیں ہم میرے پاس نہیں اس کے لیے ٹائم۔ تم اپنے منہ سے بولو نہ بولو، جو اپنی تمہاری زندگی یہ بتا رہی ہے، تو ایکچولی اپنے زبان حال سے بول رہے ہو، تمہاری حالت یہ ہے، بھول گئے اس کو ہی، بھول گئے۔ تم تھے کیا، اپنی اوقات کو تو سمجھو، ایک وقت ایسا تھا جس میں تم ایسی چیز تھے جس کا ذکر کرنا بھی انسان پسند نہیں کرتا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو اس نے بتا دیا اس کو سننے والا دیکھنے والا، کیا اس کے احسان کا یہ بدلہ کہ تم اپنے خالق کے خلاف ہی سماعت اور بصارت کو استعمال کرنے لگے؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے گناہ ظلم ہے، شرک ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی ظلم ہے، کسی خود بتائیں نا اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ نہ تم سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہو، تم ٹی وی پہ بیٹھتے ہو، تمہیں نا دین کی باتوں سے الرجی آتی ہے، الرجی کو تم ان سے، اللہ رسول کا نام آ جائے تو تمہیں انکمفرٹیبل ہونے لگتے ہو، کیا باتیں شروع کر دی، کمان واٹ فار یو، انسان ذرا اپنی اوقات تو دیکھ، خود کو ذرا آئینے میں تو دیکھیں، یہ اتنا بڑا جو جسم کھڑا ہوا ہے کسی نے پیدا کیا ہے، کسی نے بنایا ہے، تو اپنے آغاز کو تو دیکھو، چھوٹی سی آیت ہے اور انسان کا بتا دیا وہ کیا تھا اور کیا بن گیا۔ ہاں اللہ نے تیرے اوپر جو احسان کر دیا وہ اس کا یہی بدلہ ہے، تو اس سے ہی جھگڑنے لگے، ہاں اس کا یہی قصور ہے کہ اس نے تجھے پیدا کیوں کر دیا، نعوذ باللہ، ہاں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے تم اس کو قصور وار ٹھہرا رہے ہو۔ سورہ یاسین میں بھی ہے نا کہ انسان کیا غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا، اب اس کو دلیلیں دینی آ گئی ہیں، اب باتیں بنانی آ گئی ہیں، اب نخرے آ گئے ہیں، اب کہتا مجھ سے نہیں ہوتا۔ زبان اس رب نے دی، وہ زبان اسی کے خلاف بول رہی، اللہ اکبر، یہ عقل اس نے دی تو چاہتا تو تمہیں پاگل بنا دیتا، عقل ہی کام نہ کرتی، دنیا میں ایسے لوگ ہیں نا ان کی عقل نہیں کام کرتی، معذور ہیں، چاہتا تو تمہیں ایسا بنا دیتا، عقل ہی نہ تمہاری کام کرتی، پھر بتاتے بناتے باتیں، پھر تم اب بحثیں کرتے ہو، تم اللہ کے احکامات میں بحثیں، اس میں مین میخے نکالتے ہو، اس میں تمہیں فلوز نظر آتے، یہ نہیں صحیح ہے، وہ نہیں صحیح ہے، اللہ اکبر۔ چاہیے تو کیا تھا کہ اس عقل سے کام لے کے اپنے خالق کو پہچانتے، اس کے آگے جھک جاتے، اس کے آگے روتے کہ اللہ میں کیا تھا، تو نے مجھے کیا کر دیا، تو نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میری کیا اوقات تھی، میں تو ایک گندے پانی کی بوند سے زیادہ نہیں تھا، میں کیا تھا، پہچاننے تو صحیح خود کو، کیا اسی طرح تھے ہم ہمیشہ سے، کیا ایسی تھی میں؟ مگر بڑا ناشکرا ہے جو اپنی محسن کے احسانات کو بھول جائے، بڑا ہی ناشکرا ہے، ہم تو کسی کے ساتھ ذرا ہی بھلائی کر دیتے نا، اس کے بعد باتیں سنا سنا کے اس کو، نہیں میں نے تیرے ساتھ ایسے کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس کی مجال کہاں ہے کہ وہ ہمارے سامنے آنکھ بھی اٹھائے، اور خود روز اللہ کی ناشکریاں کرتے، نافرمانیاں کرتے، اور ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس نے یہ احکامات دے کیوں دیے ہم، कैसे मान ले हम ये? अब जो भी आपको अल्लाह का हुक्म मुश्किल लगता है, मसलन कोई भी चीज आपको मुश्किल लगती है, नहीं ये नहीं मुझसे होती, ये नहीं मैं कर सकती, आए अमल करना बड़ा मुश्किल, तो जरा सोच लिया करें कि किसको कह रहे हैं। वो रब जिसने मुझे नुतफे से यहां पे खड़ा कर दिया, अगर आज उसने मुझे ये सूरत सीरत ये सब जिसम दे दिया तो अब मुझे नखरे आ रहे हैं ये बातें कहने में। मसलन औरतों के लिए मिसाल के तौर पे पर्दा बड़ा मुश्किल है, तो क्या थे आप? आज पर्दा करना मुश्किल हो गया, किसको बता रहे हैं? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा किसको कह रहे हैं? वो जिसने आए गंदे पानी की बूंद से आज आपको इतना बड़ा करके खड़ा कर दिया, ना वो करता ना तो फिर देखते ना तो इस तरह की कोई चीज की जरूरत ही नहीं थी। आर्ग्यू करना इसलिए आया कि उसने एहसान कर दिया, इसलिए एहसान का बदला फिर यही होना चाहिए था। फिर अब आसमान और जमीन की पैदाइश का बताया, तुम्हारी अपनी पैदाइश को देख लो। अब उसके बाद सबसे ज्यादा जो बेदुइन लाइफ में जो चीज इंपॉर्टेंट थी ना, वो उनके कैटल थे, उनके कैटल, उनके ऊंट, उनके बकरियां, ये चीजें, घोड़े या और ये जो जानवर थे ना उनके, वो उनके लिए बहुत बड़ी कमोडिटी थी। ना सिर्फ उनका माल था, उनकी सवारियां थी, उनका खाना पीना था, उनसे और बहुत सा बेशुमार और फवायद लेते थे। तो इसलिए उसके बाद वारन उनका जिक्र आया, वल अनआम खलकहा, और चौपाए उसने पैदा किए। चौपाए में अनाम में कौन होता है? भेड़ बकरियां ऊंट गाय वगैरह, ये सब अनाम है, उसने पैदा किए। लकुम फीहा दिफ़ुन, इसमें तुम्हारे लिए गर्मी का सामान है। आप देखें इनके ऊपर जो ऊन होती भेड़ों के ऊपर, वूल की आज भी कितनी महंगी होती है, और जितना भी इंसान ने दूसरा गर्मी के लिए गर्म रखने के लिए अपने आप को जो सामान तैयार किया, मगर वूल अपनी जगह जो प्योर वूल है उसका देखें कोई नेमल बदल नहीं। सेकेंडली आप देखें चमड़ा जो है लेदर, गाय वगैरह का लेदर होता है, आप देखें आज भी उसकी जैकेट्स कितनी महंगी होती, वो चाहे कितना भी सिंथेटिक बना लिया लेकिन वो वाली बात नहीं है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इसमें इंतजाम किया। और फिर देखे ना, जब कोई भी नहीं फैक्ट्रियां होती थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती थी, तो ये जानवर अल्लाह ताला ने चलती फिरती फैक्ट्रियां बना दी, इसे अपनी गर्मी का सामान ले लो, उसी से ऊन निकाली उसको पहन लिया, सुभान अल्लाह। अच्छा अब इसमें ये भी है, और वह मुनाफे और फायदे इतने बेशुमार फायदे हैं, जैसे मैंने आपको बताया सवारियों के भी ये काम आते हैं, दूध भी का जरिया है, आमदनी का जरिया है, और उनको बेचना खरीदना ये बढ़ते हैं फिर उनसे। अब आप एक गाड़ी ले ले, गाड़ी तो बच्चे नहीं देगी कि आप उसको भी बच्चों को भी बेच के और फिर उसे आगे, गाड़ी तो बल्कि आपके पास होती है ना तो तब भी वो जितने दिन आपके पास रहती है तो पुरानी ही होती जाती है, उसकी वैल्यू कम ही होती जाती है, उतने की नहीं बिकेगी। लेकिन जो जानवर है अल्लाह ताला ने कैसी इस फायदेमंद चीज बनाई है कि आगे मल्टीप्लाई होता है, उससे आगे से आगे और फायदा होता है, वो एक नहीं रहता, वो दो फिर चार फिर आगे बढ़ते जाते हैं, तो कितना फायदा है उसका। तो वह मुनाफे, और फिर कितना भी उसकी एज हो जाए उसको फिर उस पर फिर भी उससे फायदे ही हासिल होते रहते हैं, और नहीं तो वह मिनहा तकुलून, उसमें से तुम खाते हो, उसका गोश्त भी खा लेते हो, उसका दूध पीते हो, उसके पर सवारी करते हो, उससे ऊन उतारते हो, उससे लेदर लेते हो, उसके बेचते खरीदते हो, कितने तुम्हारे काम की चीजें, उसकी इवन चर्बी भी यूज होती है, उसको पिघला के भी कितना मतलब कुकिंग में यूज होते हैं। वाला कुम्फी है जमाल, और इसमें तुम्हारे लिए खूबसूरती भी है। अब जानवर में भी ना आप देखें, इसीलिए तो जू बनाए जाते हैं, इसीलिए तो ये पेटिंग जू होते हैं, इसीलिए तो और इस तरह की जगह होती हैं जहां पे फार्म्स हैं, वहां पे खूबसूरती जानवरों से होती है, आज भी इनमें अट्रैक्शन है। आप देखें बच्चे कितने खुश होते हैं, इवन बड़े भी होते हैं उनको देख के, हीना तो रे होना व हीना तो तसरहून, लेकिन सबसे ज्यादा जो जानवर का मालिक होता है उसको खुशी कब होती? जब तुम शाम को चुगा के लाते हो, शाम को ला रहे होते उनको और सुबह को चराने ले जा रहे थे, तो सारे जानवर ऐसे जो शाम को हैप्पीली आ रहे होते हैं और सुबह को भागे जा रहे होते चरने के लिए, तो तू बाहर निकल के उनको चराते थे ना, घरों के अंदर तो नहीं ला के रखते थे उनको, बाहर मेडोज में या और बाहर जो जंगलों में लेकर जाते थे चराने के लिए। तो जिस वक्त वो जा रहे हैं और जिस वक्त आ रहे हैं, उस वक्त उनके में हुसन है और खुश कर देता है ना जो उनका मालिक है उसको। अच्छा अब आप देखें, जैसे मैंने बोला उस तरह यहाँ पे नहीं है, सुबह और शाम की बात नहीं, शाम और सुबह की बात है, यानी शाम पहले आए और सुबह बाद में। क्यों? जमाल दोनों टाइम्स पे है, लेकिन शाम का वर्ड पहले आया और सुबह का बाद में आया, कोई वजह आपको समझ आती है? देखिए वजह ये है, आपसे सवाल पूछो करो ना, आप भी सोचा करें, ठीक है? वजह ये है कि जब शाम को जो जानवर आते हैं ना, उनके पेट भरे होती हैं खुश खुश, मैंने आपको बताया ना, खुश खुश हैप्पीली आ रहे हो, वो जो या वो उनकी चाल और वो उनका मतलब जैसे जिस तरह उनका आना होता है ना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। सुबह को भी अच्छे हैं, सुबह को भी अच्छे लगते हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन जो शाम को जिस तरह वो भरे हुए पेटों के साथ आ रहे होते हैं, तो उसका जमाल और ही ज्यादा है, उसकी खूबसूरती और ज्यादा है, ठीक है? इस वजह से पहले शाम का आया और बाद में सुबह का आया। तो ये वक्त दोनों बहुत भले होते हैं। وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ और उठाते हैं तुम्हारे बोझ शहर की तरफ, लम तकूनु बालिगीही इल्ला बिशिक्कल अनफुस, तुम्हारे बोझ उठा उठा के लेकर जाते हैं शहरों की तरफ, तुम नहीं उसको पहुंचा सकते थे वहां तक मगर बड़ी मुशक्कत के साथ, बड़ी तुम्हारे लिए मुश्किल होती है। खुद सोचे ना कितने कितने जब फसलें होती हैं या कितना और सामान होता है, जब जानवरों के ऊपर रख के ले जाया जाता है तो उसको ले जाने में कितनी सहूलत है, इनको अल्लाह ताला ने कितना हमारे लिए बार बरदार बना दिया, बोझ उठाने वाला बना दिया। सामानों के बोझ आप देखें, गधे के ऊपर कितना बोझ लादा होता है, आज तक भी कितना बोझ लाद के लेके जा रहे होते हैं। फिर आप देखें जो और इस तरह बैलगाड़ी है, ये वो कितने वो भारी चीज को पुल करके लेके जा रहे होते हैं। तो ये तुम्हारा सामान उठा के लेकर जाते हैं, जिनको तुम अगर तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाता ना, तो तुम्हारे लिए कितनी मुशक्कत होती, कितना मुश्किल हो जाता। अब आप इसको कयास करें ना, ऐसे जैसे आज आज भी वैसे तो कई जगहों पे, एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, उनके अंदर उन्होंने दिखाया बहुत दूर पहाड़ है, इतने पथरीले पहाड़ थे, चट्टाने जिसको कहेंगे, रॉक्स थी हर तरफ, यानी पता नहीं लोग भी कैसे वहां पे चलते होंगे, लोगों को चलना मुश्किल, वहां पे रहने वाले तो जाहिर है उनको आदत हो गई होगी। तो उन्होंने दिखाया बड़े बड़े हॉर्न्स वाले बकरे और ऐसे चीजें थी जो वो जानवर थे, कि उन्होंने कहा सिर्फ यही यहाँ पे चल सकते हैं, पहाड़ी जो जानवर थे ये सारे, लेकिन उन्होंने कहा कोई और नहीं यहाँ पे आ सकता, गाड़ियां वाड़ियां तो बिल्कुल ही सोच ही आप नहीं सकते कि वो वहां तक पहुंच सकती है, वहां पे सड़कें भी नहीं थी वैसे तो, लेकिन अब वो लोग भी वहां रह रहे हैं और वो अपना जो भी सामान लाना होता नीचे से जाते हैं, पहाड़ों के नीचे जाते हैं, कुछ भी लेकर आना है, वो शहरों से कुछ खरीदो फरोख करनी है, तो वो इनके ऊपर रख के लाते हैं, अगर उनको लेके चढ़ना पड़े। ठीक है, ये कुरान हर जमाने और हर तरह के लोगों के लिए, सिर्फ हम अपने घरों में बैठे में ना सोचे हमारे पास तो गाड़ी है, हम गाड़ी में जाते हैं और ले आएंगे, हमें क्या जानवरों का, हर तरह के लोगों के लिए। अब उन लोगों की सोचेंगे कितनी मुशक्कत हो अगर उनको सामान भी उठा के लाना पड़े, और इतना इतना सामान लादा हुआ उनके ऊपर और वो लेकर आ रहे हैं आराम से, खुद भी अब उसके ऊपर सवार हो जाते। और देखें पहाड़ी इलाकों के अलग जानवर हैं, सहराओं के अलग जानवर हैं, सहरा में भी चलना आसान थोड़ी होता है, पैर धस धस जाते हैं, उनमें भी ये सामान उठा के लेके जा रहे होते, क्योंकि इसलिए ये है इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, के बेशक तुम्हारा रब बड़ा ही शफकत करने वाला, तुम्हारे पर बड़ा ही मेहरबान है, इसलिए उसने ये जानवर पैदा कर दिए तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा, और घोड़े और खच्चर और गधे, लितर का बूहा व जीनतन, ताकि तुम सवारी करो इन पर, और जीनत भी है तुम्हारे लिए, खूबसूरती का सामान भी है। अब देखे घोड़े, आज तक भी किसी ने घोड़ा पाला हो ना तो बड़ी खूबसूरती है उसकी, आज भी लोग तस्वीरें मैंने देखी, लोग घोड़ों के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। इतना इसको प्रेस्टिजियस जानवर समझा जाता है, इसके तो पेशानी के साथ अल्लाह ताला ने खैर बांध दिया कयामत तक के लिए, हदीस में है ना। तो घोड़ा भी और ये खच्चर भी और गधा भी, ये सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर सवारियां भी होती हैं, जिन पर सामान भी रखा जाता है, और फिर ये जीनत का सामान भी है। तो इनको देख के भी बड़ा अच्छा सा लगता है, जीनत है ना इनमें, एक अट्रैक्शन है। इसीलिए आज तक लोगों को घोड़े पालने का शौक है, कितने फायदे हैं ना जानवरों में। अल्लाह अकबर। तो एक बदोन की तो पूरी लाइफ ही इनके ऊपर डिपेंड करती थी, लेकिन आज तक हम इनसे दूध भी ले रहे हैं, आज तक हम खाने के लिए भी ये चौपाई जानवरों को इस्तेमाल करते हैं, इनका गोश्त खाते हैं, ये माल भी शुमार होता है, इनकी हड्डियां तक, उनकी भी जेली और वो बनती है, जेलेटन भी उससे निकलता है, फिर हड्डियों के ऊपर लिखने का भी काम होता है, इनकी हर चीज ही इस्तेमाल होती है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिक, सुभान अल्लाह। और फिर सुभान अल्लाह, सबसे बड़ी बात ये, हमसे लेते कितना कम है और कितना कम कीमत है जो लेते हैं। क्या लेते हैं उनको, वहां पे आप छोड़ दें वो खुद ही चर चुर के आ जाते हैं। अगर आपको उनके लिए कुछ ज्यादा ही कुछ चारा भी लाना पड़े तो वो तो बिल्कुल ही कम कीमत का होता है, और उसके मुकाबले में वो आपको देते क्या है, दूध जैसी कीमती चीज, गोश्त इतना कीमती, वो तो आज भी कीमती, कितना महंगा। तो ये हम सोचते नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये कैसी मशीनरी हमारे लिए तैयार कर रखी। दूध आप ऐसे रखेंगे ना खराब हो जाएगा, ये चलती पिलती मशीन है दूध की। गोश्त वैसे रखा हुआ खराब हो जाएगा, चलता फिरता गोश्त का एक डिपू है जो आपके लिए घूम रहा है, जब चाहेंगे उसको जिबा करके खा लेंगे, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ताला तुम पे रऊफ और रहीम है, और अल्लाह ने तुम्हारी सवारियों के लिए भी इंतजाम किया, और सवारी कोई ऐसी नहीं कि कोई डब्बा सा एक दे दिया जाता बस उसके ऊपर बैठ के चले जाओ, नहीं, उसमें जीनत भी रख दी, नहीं, इंसान की एस्थेटिक सेंस का भी ख्याल रखा अल्लाह ताला ने। ये क्या चीज इंसान को खूबसूरत लगती है, उसको भाती है, तो उसमें ब्यूटी भी रखी है। अब हम कहें हमें क्या घोड़े हैं या गधे हैं या वो है, हमने क्या करने, हमारे हम तो नहीं कभी यूज करते, शायद सारी जिंदगी में हमने सवारियां की हो, तो हमारे लिए क्या है। बात यह है कि ये वो सवारियां जिनको अरब लोग पहचानते थे, अरब पहचानते थे ना, अगर उनको कहा जाता कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए गाड़ियां, ट्रक्स, ट्रेन्स, जहाज, ये भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा किए हैं, तो उनको कोई समझ नहीं आनी थी। तो सुभान अल्लाह, ये है ये मौका, ये जगह कुरान के एजाज को आप देखें, कुरान का मोजा है, शानदार मुकामात में से ये एक मुकाम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वहिया खलुकु माला तालमून, और वो पैदा करेगा जिसको तुम जानते ही नहीं अभी, सुभान अल्लाह। इसमें जमाने की भी रायत हो गई, जो पहले मुखातबीन है उनकी जो मेंटल लेवल था उसकी भी रायत की गई। वो उनको अब कहते थे ना, वो ये चीजें गिनवा दी जाती हैं सारी जो आज मौजूद है, तो बेचारे क्या कहते, वो तो बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आनी थी कि क्या कैसे कहा जा रहा है, उड़ने वाली एक चीज होगी, इस तरह भागने वाली एक चीज होगी। सुबहान अल्लाह, जब अल्लाह ताला ने कह दिया यखलुकु मा ला तालमून, तो कयामत तक जितनी सवारियां आ रही हैं, जितनी भी आएंगी और जितनी आज हैं, सब के लिए लफ्ज है। 1000 साल पहले तक तो कोई नहीं जानता कि तक हवाई जहाज उस तरह उड़ेंगे आसमानों में, और हमें नहीं पता आज से 1000 साल बाद कौन सी ऐसी और सवारियां आ जाएं जिनका हमें आज नहीं मालूम। तो बताएं उन उन सवारियों के लिए क्या। अब हमारे बाद आने वाले लोग कहेंगे, लो वो तो लोगों को पता ही नहीं था, वो तो अपनी गाड़ियों को ही बहुत समझते थे, देखो आज हमारे पास क्या चीजें। तो वो है, वो भी अल्लाह ही ने पैदा किया, आप नहीं पैदा कर रहे, अल्लाह ही ने पैदा किया। क्यों, कैसे अल्लाह ने पैदा किया, तो हम अपनी फैक्ट्रियों में बनाते हैं, जो अकल किसने दी बनाने के लिए, और वो मटेरियल कहाँ से लाए हो, तुमने पैदा किया क्या, लोहा, ये पेज, ये कुछ, ये रबर, ये जो भी और चीजें उसमें इस्तेमाल होती, तुमने पैदा की। मटेरियल देने वाला भी वो, अकल देने वाला भी वो, सलाहियत देने वाला भी वो उसको बनाने की। तो खुद हम बड़े बन के बैठ जाते हैं, देखो हमने कितना कारनामा सर अंजाम। तो वो पैदा करेगा जो तुम आज नहीं जानते, और देख लें क्या क्या नहीं अल्लाह ताला ने पैदा किया आज भी। तो ये प्राइवेट जेट्स हैं लोगों के, फिर जहाज दूसरे हैं, फिर स्पोर्ट्स कार्स हैं, फिर एसयूवीज, ट्रक्स, पता नहीं क्या क्या चीजें, रॉकेट हैं और ट्रेन्स हैं और सबमरीन्स हैं और पता नहीं क्या क्या कितनी चीजें। वअलल्लाहि कस्दु सबील, और अल्लाह के जिम्मा है रास्ता दिखाना, अल्लाह के जिम्मा है कि सीधा रास्ता वो लोगों को दिखाए। कस्दु सबील कहें सिराते मुस्तकीम है, कस्द कहते हैं दरमियाने को, मोतदिल को, जो सीधा है, स्ट्रेट पाथ। अल्लाह ताला का अल्लाह पर है का मतलब क्या, अल्लाह के जिम्मे है, उसने अपने जिम्मे खुद लिया। उसने इंसान को पैदा करके ऐसे नहीं छोड़ दिया कि वो जहां मर्जी घूमता फिरे, जो मर्जी करता फिरे। उसने उसकी रहनुमाई का भी इंतजाम किया कि देखो ये रास्ता सीधा है जिससे तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी और आखरत भी। तो उसने सीधे रास्ते को बनाया, उसको क्लियर कर दिया, बिल्कुल वाजे करके बयान कर दिया। अब कोई फिर भी अगर कहे हमें तो समझ ही नहीं आती, मैं तो कंफ्यूज हूं, मुझे तो पता ही नहीं चलता सीधा रास्ता कौन सा है, ये गलत बात है, ये गलत है। अगर आप ये कहते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आती, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, नहीं, स्ट्रेट पाथ को तो अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया, अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया ये, उसने इंसानियत को कंफ्यूजन में तो नहीं छोड़ा। आप क्या कहना चाहते हैं अल्लाह ने कंफ्यूजन में छोड़ दिया? हाँ ये जरूर आप कह सकते हैं कि आपके अंदर नहीं इतनी तलब कि आप सर्च करें, आप सीधे रास्ते तक पहुंचने की आपके अंदर तड़प नहीं है, परवाह ही नहीं है कि मैं सीधा रास्ता जानूं, वरना अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया। तो बड़े आराम से ये ना कह दिया करें कि मुझे तो कंफ्यूजन है, पता नहीं क्या है। ये आपकी ड्यूटी से फारिग नहीं हो गए, आप अपनी जिम्मेदारी से फारिग, क्योंकि अल्लाह ताला ने, क्यों अल्लाह ताला ने सीधे रास्ते को वाजे कर दिया, क्यों अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया, ये बताएं। इसलिए लिया ना ताकि तुम उसके ऊपर चलो, इसलिए तो नहीं कि बस सीधा रास्ता वाजे कर दिया, अब आप अपने अपने रास्तों में चलते हैं, सीधा रास्ता पड़ा रहे इधर, हमें क्या। वाजे करने का, सीधा रास्ता अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने का की वजह है ताकि लोग प्रॉब्लम में ना पड़े, लोगों को खुद ना अपनी अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हम सोचें पहले बैठ के कौन सा रास्ता सही होना चाहिए था, अपनी जिंदगी के लिए पहले खुद रूल्स बनाए। अल्लाह ताला ने सारे बता दिए हमें बता दिया ये रास्ता सीधा है, इसके ऊपर चलो। वह मिन्हा जायरुन, और इनमें कुछ टेढ़े भी हैं, ऐसे भी रास्ते हैं जो टेढ़े हैं, सबील एक ही है, सही सीधा रास्ता तो एक ही है, बाकी टेढ़े रास्ते भी हैं, बहुत से टेढ़े रास्ते हैं। और आज दौरे फितन में तो इतने यकीन करें रास्ते टेढ़े हैं कि आप ये सोशल मीडिया पे बैठ जाएं, आप टीवी को देख लें, आप खबरें देख लें, आप दुनिया की बातें सुन लें, कोई भांत भांत की बोलियां, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ऐसे में हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें एक सीधा रास्ता दिखा दिया, हमें बता दिया कि क्या रास्ता है, अब इस रास्ते से एग्जिट मत लें, यही रास्ता है, कसदु सबील ही है जो अल्लाह तक पहुंचाने वाला है, बाकी रास्ते नहीं है, बाकी पगडंडियां इस पे नहीं मोड़ना। और आइंदा ये कहना छोड़ दें कि सब ठीक है जी, सब ठीक है, कान को इधर से पकड़ लो या इधर से, एक ही बात तो है ना, अल्लाह तक ही बेचारे सारे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो भगवान कह देता है, वो ईसा कह देता है, वो पता नहीं क्या बुद्धा कह देता है, वो फलां कह देता है, अब सारों की देखें नीयत तो एक ही है ना अल्लाह तक पहुंच, तो सारे पैगंबरों की तो आपने तालीमात को ही जीरो कर दिया जब ये कह दिया सारे ही ठीक थे, तो वो क्या करने आए, सारी जिंदगी उन्होंने खपा दी अपनी, क्यों आए थे सारे ही अगर ठीक थे तो आपके मुताबिक। आजकल इस चीज को ना बहुत कॉमन किया जा रहा है ताकि कोई मसला ही ना हो, ये कोई कोई किसी को कुछ भी ना कहे, सारे जो मर्जी करते रहे, शैतान का कितना बड़ी चाल है जिसको आप समझते नहीं है, सारे ही सीधे हो गए तो फिर सीधा रास्ता कौन सा है फिर, जो आपका बहुत ही डिफरेंट है कोई, अगर सारे ही सीधे हैं तो आप फिर उसके सीधे रास्ते का प्रचार करते फिर रहे हैं। ये तो आपने बेसिकली कह दिया कि सारे ही जन्नती हैं, सारे ही सीधे हैं, सब रास्तों से अल्लाह राजी है, सारों से ही अल्लाह खुश है, और बस कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत है, सब ठीक है। भाई तो ये क्या कहता है कुरान फिर? एक मुसलमान तो कभी भी नहीं ये कह सकता, तो प्लीज ये कभी ना कहे। इसी तरह क्या है वो हदीस कि जो है मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, यानी कि 72 है, 73 तो मेरी उम्मत के हो जाएंगे, ये सब गुमराह है उनके अंदर सिवाय एक के, सब जहन्नमी है। तो आप कहते हैं नहीं जी सारे ही ठीक है, आपने तो सारों को डिक्लेयर कर दिया ठीक। हदीस एक तरफ पड़ी हुई है, आपकी बातें अलग है, एक अलग ही रास्ता लेके खड़े हो गए जी, सारे ठीक है, किसी को ना गलत कहो, कोई गलत है ही नहीं। अगर आप समझते हैं कि सारे ही ठीक है, तो आपकी डिस्टिंक्शन कहाँ है? आप कैसे अलग हुए? आपके अंदर फिर क्या खासियत बात है? आपका अकीदा क्यों कोई अपनाए, क्यों कोई इस्लाम लेकर आए, या क्यों कोई सिराते मुस्तकीम पे चले, जब सारी पगडंडियां भी ठीक ही हैं? पगडंडियां तो वहां नहीं लेके जा रही, फरमाया मिन हा जायरून, ऐसे भी हैं जो टेढ़े हैं, वो नहीं अल्लाह तक पहुंचाते। ये बात समझ आ गई कि नहीं? इस कॉन्सेप्ट को प्लीज क्लियर करें। और वो जो एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो एक है जो जन्नत में जाने लगा वाला है, तो सहाबा ने पूछा वो कौन सा है, तो फरमाया मेरी उम्मत में होंगे, मेरी उम्मत में, गैर मुस्लिमों को नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मेरी उम्मत में होंगे 73 फिरके। तो अपने आप को वो भी तो मुसलमान ही कह रहे होंगे, लेकिन एक है जो सिर्फ जन्नत में जाएगा, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर। फिर हम कहते हैं कि वही सुन्नत के ऊपर आओ, ये काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, कहते तो क्या हो गया? नहीं है साबित, तो हमने तो करना है, हमारे तो बड़े करते थे। जबकि इस हदीस में वाजे तौर पे कि जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे, ये नहीं कि जो तुम्हारे माँ बाप के रास्ते पे, जो तुम्हारे माँ बाप करते थे वो वाला रास्ता भी मेरा ही है, तुम्हारा बड़ों का रास्ता भी, तुम्हारे बुजुर्ग है उनका भी सही है, मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे। तो इसके बाद कितने केयरफुल हो जाना चाहिए हमें कि फूंक फूंक के देखें पहले कि ये काम मेरे नबी का है या नहीं, ये काम सहाबा ने किया कि नहीं किया, नहीं किया तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि आप सरसर हमने फरमाया कि सिर्फ एक ग्रोह ही जन्नती है, और वो ये वाला ग्रोह है, बाकी सब जहन्नमी है, जिन्होंने खुद ही अपनी अपनी चीजें बनाई हैं, अपने अपने रास्ते बनाए हैं, टेढ़े रास्ते हैं वो सब। तो यही कस्तु सबील है, और इसके बावजूद अगर हमारा आज तक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, तो जो कहता है ना सारे ही सही है, तो वो खुद ही गलत है फिर, इसका मतलब उसका कोई अकीदा ही नहीं है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता कि हम मैं हूं क्या। वलौ शाअ लहदाकुम अजमाईन, अगर वो चाहता तो हम सबको हिदायत दे देता। ये हम पहले भी इस टॉपिक पे कई दफा बात कर चुके हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो जबरदस्ती सबको पकड़ के हिदायत दे देता। तो इसलिए कोई ये ना कहे अगर अल्लाह चाहता तो मुझे हिदायत दे देता, मैं क्या करूं, मुझे अल्लाह ने ही नहीं हिदायत दी। नहीं, असल बात ये है कि अल्लाह ताला जबरदस्ती हिदायत नहीं देता, अगर तुम चाहो कि हिदायत लेना वो तुम्हें हिदायत दे देगा, तुम सीख करो हिदायत, तुम तलब करो, तुम्हें तुम्हारे अंदर खुद चाहत हो तो अल्लाह दे देगा हिदायत। लेकिन अगर तुम ये कहो कि मैं तो नहीं हिदायत लेना चाहती लेकिन अल्लाह ताला मुझे जबरदस्ती दे दे, जबरदस्ती नहीं देता वो, इम्मा शाकिया हुआ अम्मा कफूरा, चाहे तुम शुक्र गुजार हो, चाहे तुम कुफर करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत के रास्ते दिखा दिए हैं, अब तुम्हारे ऊपर चॉइस छोड़ दी है। तो अब आज से हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं कि कौन सा रास्ता सीधा है, क्योंकि अगर हमने ये कहा तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने वाजे नहीं किया रास्ता। हाँ, क्योंकि उसने तो अपनी जिम्मेदारी ली है कि मैं मेरे ऊपर है जिम्मा कि मैं कसद सबील बताऊं, उसको बयान कर दूं, तो हम क्या कहना चाहते हैं अल्लाह ने बयान नहीं किया। और दूसरा माना यह है कि अल्लाह कसद सबील, जो सीधा रास्ता है वो अल्लाह की तरफ जाता है, ये दूसरा माना है इसका, जो सीधा रास्ता है ना वो अल्लाह की तरफ लेकर जाता है, लेकिन बहुत सारे टेढ़े हैं वो कहीं और ही ले जाएंगे। हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन, वो ही अल्लाह है जिसने जिसने उतारा आसमान से पानी को। देखिए आज तक इंसान आसमान से पानी नहीं उतार सका है। बारिश बरसात लगता है कोई इंसान? आर्टिफिशियल रेन का बड़ा शोर मचाया, क्या है वो जहां से पानी इधर उधर फेंक दिया, चलो जी आर्टिफिशियल रेन हो गई, उसको समझ लिया के मारे। इसीलिए तो फिर देखिए ना, इंसान की इतनी कुदरत होती तो किसी जगह पे भी तहत ना पड़ता, खुद ही बारिश बरसा लिया करते। लेकिन ये ऐसे नहीं है, बारिश का बरसाना सिर्फ अल्लाह की कुदरत से है। तो वो ही नाजिल करता है आसमान से पानी, लकुम लिए, तुम्हारे तुम्हारे लिए करता है बारिश। अच्छा जब हम बारिश को देखते हैं बड़ा हमें मजा आता है, वो बारिश हर एक को ना खुश कर देती है, एक माहौल खुशगवार हो जाता है, एक इंसान की तबीयत में एक मतलब खुश हो जाती है तबीयत। अब देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं, पकवान भी बनाते हैं, बारिश में नहा भी लेते हैं, मजा भी करते हैं, पिकनिक पे भी चले जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते मेरे मालिक ने ये बारिश का कैसा निजाम रखा मेरे लिए। देखिए जब लकुम का वर्ड आता है ना, मैंने अपने कुरान में इसको सर्कल किया है, इसलिए कि ये चीज मुझे एहसास दिलाती है कि किसी का एहसान है तेरे ऊपर, उस एहसान को समझ, उसको मान, मेरे लिए। जब इंसान को पता चलता है ना, आपको कोई कहे आपके लिए जी हमने स्पेशली ये खाना बनाया, आपके लिए हमने ये सारा इंतजाम किया, आपको कितनी खुशी होती। इंसान को लगता है कि मुझे किसी ने इंपॉर्टेंस दी है इतनी, अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी इंपॉर्टेंस दी, तुम नुतफे थे, अल्लाह ने तुम्हें क्या बनाया, तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें पैदा कर दी हैं, चौपाए तुम्हारे लिए बना दिए, बारिश बरसा दी। बारिश का निजाम अगर आप पीछे जाके देखें, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा निजाम है जो चल रहा है। बारिश ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ऊपर से आसमान से कहीं टपक के आ गई, कैसे वो, अब आप साइंस अगर पढ़े तो आपको पता चले कैसे समुद्रों से वो कतरे भाप बन के ऊपर उड़ते हैं, फिर आपके बादल बनते हैं, फिर बादल चलते हैं, फिर जाके उनके अंदर जो निजाम होता है, फिर कैसे बारिश बरसती है, फिर कैसे एक एक कतरा करके बरसती है। ऐसे नहीं कि ऊपर से कोई टब के टब फेंक दिया जाए पानी के तो लोग ही मर जाए, नहीं, कतरा कतरा करके, एक एक कर कतरा, कहाँ किस कतरे ने गिरना है, अल्लाह ताला उसका भी इंतजाम फरमाता है, ये सब तुम्हारे लिए। जब इंसान को ये एहसास होता है ना कि मेरे लिए किसी ने किया है कुछ, तो क्या जज्बात पैदा होते हैं बताएं। आपको कोई कहे आपके लिए हमने ये बनाया, आपके लिए हमने ये किया, ये जितनी डेकोरेशन है ये आपके इस्तकबाल के लिए की गई है। देखिए आप भी दुनिया में आए, मैं दुनिया में आई, हम जब दुनिया में आए हैं तो हमारे लिए सब सजाया गया है, ठीक है, सब सजाया गया है इसको, ये सारा जो सजाव है ना, ये घास जो है ग्रीन, ये आसमान नीला, ये पानी के झरने, ये दरख्त, ये फूल, ये पौधे, ये जानवर, देखे ना, वलकुम फीहा जमालुन हीना तुरीहूना वहीना तसरहून, लकुम वहां पे भी लकुम ही है, ठीक है, तुम्हारे लिए ये भी खईल और बिगाल और हमीर भी बनाए, और तुम्हारे लिए ये वो और भी बहुत सारी सवारियां बनाएगा, और तुम्हारे लिए बारिश बरसाए। इसके बाद फील इट, फील करें अपने अंदर कैसा एहसास होता है, अच्छा मेरे लिए बारिश मेरे लिए हो रही है, जिस दिन बारिश हो ना खुद सोचे, इसलिए कि जब आप ऐसा सोचेंगे ना तो आपके अंदर मोहसिन की एहसान मंदी होगी, शुक्र के जज्बात आएंगे कि वो कौन है जिसने मेरे लिए ऐसा किया। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे रही हूं ना, इसलिए कि वो बंदा आपको जब करता है तो आप उसको देखते हैं, और फिर उसके बाद वो आपको कहता है कि मैंने आपके लिए किया है, तो आप बड़े उसके शुक्र गुजार होते हैं, उसको गले से लगा लेती हैं, आप कहती हैं हाय तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं तो सोच नहीं सकती इतना तुमने मेरे लिए इंतजाम किया। आपकी कितनी है उसके लिए अप्रिसिएशन होती है ना, आप कितनी उसके आगे मोहब्बत से आपका दिल भर जाता है, आपने हमारे लिए इतना किया। तो मुझे बताइए अल्लाह ताला भी तो कुरान में फरमा रहा है लकुम, कितनी जगह आया लकुम, कभी इस पे भी गौर किया, सोचा कभी इस पे भी कि मुझे और आपको वो कह रहा है कि देखो तुम दुनिया में आए ना, मैंने सारी जमीन को तुम्हारे लिए सजा दिया, आसमान को भी, आसमान की भी अभी आगे बात आएगी, ये तारों से सजा दिया, कितना कुछ सजा दिया। इतनी डेकोरेशन तुम्हारे लिए की गई है। आप किसी घर पे उतरे, उसने वहां जहां से आपने उतरने से लेके घर के अंदर तक उसने वो डेकोरेशन की भी आपके इस्तकबाल में, कि आप हैरान हो जाते हैं। कहते मेरे लिए इतना हो, तो तुम ये नहीं देख रहे पूरी जमीन तुम्हारे लिए सजाई हुई है, ये डेकोरेटेड है। कहीं जानवर की डेकोरेशन है, देखिए उनमें भी जमाल भी है ना, कहीं जानवरों की डेकोरेशन है, कहीं आप देखें आसमान और जमीन की डेकोरेशन है, कहीं और फूल पौधों की डेकोरेशन है, कहीं बारिश हो रही डेकोरेशन है। फायदे भी हैं, डेकोरेट भी किया इनको, उसमें खूबसूरती भी है, इसमें अच्छा भी लगता है आपको, इसमें मिनहू शराबुन, इसमें से तुम्हारा पीना भी है, व मिनहू शजरुन फी तुसीमून, इससे तुम्हारे दरख्त भी उगते हैं जिसमें तुम चराते हो अपने जानवरों को। पानी के तो बहुत फायदे हैं, पानी जो है वो लाइफ की बेस है, पानी के बगैर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब उसके अंदर बताया जा रहा है कि देखो तुम अपने ऊंटों को चराते हो, तुसी मून का मतलब यही है ना, जानवरों को चराना, अपने ऊंटों को चराते हो, अपने जानवरों को चराते हो, यह बारिश का फायदा है तुम्हारे लिए, तबीयत भी अच्छी होती, तबीयत में भी निखार आ जाता है, और फायदे तो बेशुमार है बारिश के, सब्जा उगता है, फिर हवा पोल्यूशन से पाक होती है, इन जगहों पे बारिश नहीं होती, वहां पे देखा कैसा होता है, कितना पोल्यूटेड होते हैं वो शहर। और ये भी बात वो है, देखें ये जो बातें बताई जा रही हैं, ये उन चीजों का जिक्र है जिनके बारे में कोई भी नहीं कह सकता कि जी हमारे माबूद, हमारे खुदा बारिश बरसाते, हमारे खुदा हैं जिन्होंने ये चौपाई जानवर बनाए, हमारे खुदा हैं जो किसी को पैदा कर सकते हैं नुतफे से, हमारे खुदा हैं जो आसमान और जमीन को पैदा करते हैं, ऐसे कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए तो कुरान कहता है कि जब इनसे पूछा जाता है आसमान और जमीन को किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह ने, युम्बितुलकुम बिही ज़रअ, वो उगाता है तुम्हारे लिए इससे खेती, बारिशों से खेतियां उगती हैं, और फिर तुम खेतियों से एंजॉय करते हो, खेतियों में तरह तरह की चीजें आप देखें, गंदम है, चावल है, ये कपास है, कितना कुछ है, व जैतून व नखील व अनाब, सब पानी के जरिए ही तो ये सब पैदा होता है, बारिश से कितनी है तुम फायदे उठाते हो, बारिश बंद हो जाए तो क्या हो, मिन कुल्ली समरात, और भी हर किस्म के फल, अब मिन कुल्ली समरात कह के ना कयामत तक जो भी फल लोगों ने खाने वो सब इसके अंदर आ गए, इसलिए वो लोग तो सिर्फ जैतून खजूर और अंगूर को ही जानते थे ना, वो थोड़ी बहुत और किसी खेती को जानते थे, लेकिन जितना आज तक हम चीजों को जानते हैं वो उतनी नहीं जानते थे, इतनी वैरायटीज उनके पास नहीं थी जितनी आज हमारे पास है, तरह तरह की वैरायटीज हैं चीजों की। तो मैं कुल्ले समरात कह के सब चीजों को इसमें डाल दिया गया कि ये जितना कोई भी कयामत तक पड़ता रहेगा ना, तो अगर वो ये कहता है कि नहीं मैं तो नहीं जैतून, कभी मैंने नहीं खजूर, कभी मैंने नहीं अंगूर खाया, तो जो भी तुम खाते हो वो सब भी इसी बारिश से ही उगता है, बारिश के पानी से ही है ना। जब बाज दफा हमारे सामने नहीं ना चीजें होती तो हमें उनका इतना एहसास भी नहीं, तो हम तो जाते हैं ग्रोसरी स्टोर से उठा के ले आए, पैसे दिए लेके आ गए, हमें ये पता ही नहीं पीछे कितना बड़ा सिस्टम चल रहा है जिससे गुजर के ये चीज आज शेल्फ में पड़ी हुई है ना, वो कहां से चली और उसके ऊपर क्या क्या प्रोसेस गुजरे, क्या क्या अल्लाह ताला ने इंतजाम किया मेरे लिए ये फल यहां तक पहुंचाने तक। जब आप फल आप ग्रोसरी स्टोर से चुनेंगे ना, तो आपका ये होमवर्क है कि आप ये वो सेब को उठाने वक्त, उस केले को उठाने वक्त, उन अंगूरों को उठाने बाद सोचें कि ला तूने इसके पीछे कितना बड़ा निजाम चलाया मेरे तक ये पहुंचाने के लिए, मैं लेके जा रही ना इसको, ये मेरे घर जा रहा है, मेरे तक पहुंचाने के लिए तूने इतना निजाम चलाया। और इंसान इस चीज को भूल जाता है, इंसान इस चीज को याद ही नहीं रखता कि कोई उसका रब भी है, उसको लगता है कि मैं पैसे कमाता हूं और मैं लेकर आता हूं, वो जिस जमीन में वो बीज पड़ा उस जमीन से फाड़ के जिस रब ने उस बीज को निकाला, फिर उसको बड़ा किया, फिर उसमें जायका भरा, खुशबू भरी, रंग भरा, ब्राउन जमीन और कलरलेस पानी से रंगो रंग के फल पैदा कर दिए, उनमें मिठास भर दी, उनमें एक हर एक में डिफरेंट टेस्ट भर दिया मुझे खिलाने के लिए। अल्लाह तूने ये मेरे लिए किया, आंखों में आंसू नहीं आ जाते फिर कि अल्लाह तूने मेरे लिए किया, मैं इस काबिल कहां थी? इंसान सोचे तो सही, इन्ना फी ज़ालिका लआयतन, इसमें निशानी है लिकौमी ये तफक्करून, उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करे, सोचे समझे, बैठो तो सही, कभी सोचो तो सही। नहीं, हम उठाते हैं, थैले में डालते हैं, घर लाते हैं, काटते हैं, आधा फेंकते हैं, आधा रखते हैं, कभी गौर व फिक्र ही नहीं। गौर व फिक्र का किसके पास टाइम है? तफक्कर वो होता है कि जिसमें इंसान दिल के अंदर ना एक हलचल मचती है, एक दिल की में सोचना, समझना, दिल मसरूफ होता है, बार बार सोचना, बार बार गौर करना। तो मुसलसल जब इंसान सोचता है, एक के बाद दूसरा ख्याल, दूसरे के बाद तीसरा ख्याल, तो ये गौर और फिक्र है, इससे रब की पहचान आती है। इसकी इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं ना कि जब इंसान गौर और फिक्र करता है तो फिर वो इरादा भी करता है, फिर ये इंसान उस मोड़ पे पहुंच जाता है कि फिर दुनिया से बेरगबत हो जाता है, फिर इसकी वजह से इंसान किसी से मोहब्बत करता है या नफरत रखता है। तो ये अल्लाह तक तो पहुंचा देते हैं ना, ये अल्लाह तला की पहचान कराता है, ये बताता है कि मेरे ऊपर किसी का एहसान है, मैं किसी के एहसानों तले दबा हुआ हूं। कितने एहसान है? बेशुमार, ये तो आगे अभी बात आ रही है, कितने एहसानात हैं उसके, हर नेमत एक एहसान है, हर नेमत एक एहसान है। यकीन करें, आप अपने वजूद को देख लें या अपने इर्द गिर्द चीजों को देख लें, इनमें से कोई चीज हम डिजर्व नहीं करते थे, इनमें से कोई चीज के हम लायक नहीं थे, काबिल नहीं थे। ओ आई डिजर्व इट, अगर मेरे पास आंखें होनी चाहिए आई डिजर्व इट, अगर मेरे पास हाथ पैर और कुव्वत होनी चाहिए आई डिजर्व इट, मेरे पास सेहत होनी चाहिए बिकॉज आई डिजर्व इट। इसलिए ही जब अगर कोई चीज छिन जाती है तो हम कहते हैं किसने छीन ली, कैसे छीन ली, मैं तो नाराज हो गई उससे, उसने क्यों छीनी है, उसने क्यों वापस ले ली, मैं कोई भी चीज डिजर्व नहीं करती, कोई चीज मेरा हक नहीं है, हक नहीं है कोई भी चीज। हम लेते चीजें ऐसे हैं जैसे हमारा हक है बहुत बड़ा, हमें मिलनी ही चाहिए थी, इसीलिए फिर नाशुक्री है ना हमारे अंदर, जब हम समझते हैं हमारा हक है। जब आपको ये पता है मेरा हक नहीं है, किसी ने एहसान कर दिया, तब शुक्रगुजारी आएगी। और ये जब नेमतों वाली सूरत है ना, तो समझ लें शुक्रगुजारी वाली सूरत है, जिस इसको पढ़ के अगर फिर भी नहीं हमारे अंदर शुक्रगुजारी आई तो पता नहीं कब आएगी। नेमते अल्लाह ताला गिनवा रहा है कि ताकि तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी आए। हम गौर व फिक्र भी कहां करें, हमारे पास कहीं टाइम है कोई गौर व फिक्र करने का? दुनिया की इतनी फिक्रें हैं, गौर व फिक्र करने का टाइम नहीं। गौर व फिक्र हम उन चीजों में कर रहे हैं जिनमें गौर व फिक्र करने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और उन चीजों को हमने छोड़ा हुआ है जिनमें गौर व फिक्र करना चाहिए। हम देख रहे हैं सियासतदान क्या कर रहे हैं, सियासत में क्या हो रहा है, फलान उठ गया के बैठ गया के सो गया के उसने कितने की करप्शन की, दो की, चार की के छह की। आज वो क्या कर रहे हैं, कल वो क्या कर रहे हैं, किसका जलसा कहाँ है, कौन क्या तकरीर कर रहा है, वो खुदा के लिए इन चीजों में गौर करने को छोड़ो, लोगों ने तो अपना रमजान भी इसमें बर्बाद कर दिया। यही मैसेजेस, यही वीडियोस शेयर हो रही हैं, यही काम पे लगे हुए, जिस चीज के ऊपर गौर और फिक्र करना चाहिए और सोचना चाहिए ना, वो ये काम है। कहीं कोई फल आ रहे हैं, एक आता है फिर दूसरा आता है फिर तीसरा मौसम का आता है फिर चौथे मौसम का आता है, सारे साल रंगारंग फल उनके मौसमों के लिहाज से तुम्हारे सामने आते रहते, कभी भी नहीं तुम्हें कोई एहसास होता, कभी भी नहीं कोई अजीब बात याद आती। जिसने गौर और फिक्र करोगे ना तो फिर दिल दुनिया से उठेगा, फिर यहां पे नहीं दिल लगेगा, फिर इन चीजों की तरफ नहीं तुम देखोगे, फिर कहीं और ध्यान लग जाएगा। तो ये फारे वक्त में बजाय इंसान फिल्में ड्रामे लगा के झूठी चीजें देखता रहे, कहानियां देखता रहे, उस वक्त के अंदर गौर फिक्र क्यों नहीं करते? गौर फिक्र करना भी आपको पता है इबादत है, क्योंकि इससे भी इंसान अल्लाह तक पहुंचता है। कभी तन्हाई में ये चीजों को, नेमतों को याद करें, फिर सोचें कि किसने मेरे ऊपर ये एहसान आद किए, फिर जो आपकी आंखों से आंसू बह जाएंगे ना, तो वो आंसू हैं कि जिनके ऊपर अर्श का साया मिल जाएगा कि जब इंसान अकेले में अल्लाह को याद करके आंसू बहा दे, फिर ये इबादत है। और सहाबा कराम तो गौर व फिक्र बहुत किया करते थे। अच्छा, तुम्हें दरदा से पूछा गया कि अब अबू दरदा की कौन सी इबादत बहुत अफजल थी, फरमाया गौर व फिक्र। तो तफक्कुर, ये गौर व फिक्र इंसान के ईमान को ना बढ़ाता है। अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी दिल के अंदर, ईमान बढ़ेगा दिल के अंदर, अल्लाह ताला से अटैचमेंट होगी, दुनिया से डिटैचमेंट होगी, ठीक है, और शुक्र गुजारी आएगी, दिल खुश होगा, ये डिप्रेशन दूर होगा, एंजाइटी दूर होगी, दुनिया से दिल हटेगा। और ये जो केयरलेसनेस की जिंदगी है, इसको हमने छोड़ना है। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, कोई एहसास ही नहीं, कोई एहसास नहीं, कौन मुझे क्या दे रहा है, कौन मेरे लिए क्या क्या कर रहा है, कितना बड़ा सिस्टम मेरे लिए चल रहा है, कोई एहसास नहीं। तो गौर और फिक्र भी, मगर कुरान के साथ, ऐसे नहीं खुद ही के पता नहीं क्या क्या गौर फिक्र करना शुरू कर दें, वो नहीं। गौर फिक्र कुरान जिस तरह सिखाता है उस तरह से गौर फिक्र करना, ये फायदा देगा आपको। तो फरमाया इसमें भी निशानी नजर आएगी, सबको नहीं आनी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सूरह यूसुफ में आया था, जो इसी जमीन के ऊपर चलती हैं, दिन रात चलती हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं नजर आता, उनको कोई निशानी नहीं नजर आती। बकई मिन आयत, इनकी इतनी निशानी है जिन पे हर रोज गुजरते जाना, हर रोज गुजरते जाना, कोई गौर और फिक्र नहीं। तो उसको ये नजर आएगा जो वाकई सोचेगा, उसको निशानी भी नजर आएगी। जिसने सुबह करनी है तो खाना पीना सोना जॉब, खाना पीना सोना जॉब, खाना पीना सोना जॉब, जिसकी जिंदगी बस यही है, उसने का क्या गौर फिक्र, खाना कहाँ से आया, बस आ गया ना, इतना काफी है, ये नींद आ गई है ना, बस इतनी काफी है, नींद भेजने वाला भी तो कोई है ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, के इंसान हराम भी खाता है ना, तो अल्लाह ताला खाने, तो रब इतना करीम है, वो खाने का जायका नहीं छीन लेता कि तूने मेरी नाफरमानी के रास्ते से ये रिस्क लिया ना, अब तो इसके अंदर तुझे जायका ही नहीं दूंगा, ऐसे नहीं होता, फिर भी उसको जायका देता है। इंसान सारा दिन ना अल्लाह ताला को भूला रहता है, एक वक्त भी नहीं आता उसको रब याद आए, फिर भी जब लेटता है ना तो अल्लाह ताला नींद भेज देता है कि मेरा बंदा सो जाए, इसको आराम मिल जाए। इंसान कितनी जगह आराम देखता है, गलत चीजों पे नजर डालता है, यहाँ पे उसको नजर नहीं डालनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं करता कि वो इसको अंधा ही कर दे, अब उसको नजर ही नहीं आ रहा, क्यों तुमने क्यों देखा था वहां, जहां मैंने मना किया था वहां क्यों देखा था, तुम्हारी आंखें ही ले ले, नहीं वो आंखें नहीं लेता तुम्हारी, ये जुबान सारा दिन तपड़ तपड़ बोलती है, क्या क्या बोल रहे हैं ना, खुद भी नहीं पता क्या क्या चप्पड़ चप्पड़ लगे हुए, जो मुंह में आ रहा है बोलते जाए, जुबान को बंद ही कर देता। अल्लाह अकबर।